ओम शांति। आज मधुबन की सभा में हमारे सम्मुख एक विशेष बाबा के अमूल्य रत्न उपस्थित है, तो सबसे पहले तो हम सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच डॉक्टर ब्रिजेश भाई जी उपस्थित है। डॉक्टर ब्रिजेश जी कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट है ग्वालियर में। यूरोलॉजिस्ट अर्थात सुपर स्पेशलिटी है ये यूरोलॉजी। तो पिछले कुछ समय से हॉस्पिटल में निरंतर आ रहे हैं, महीने में 2-3 दिन आते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं। और इनकी विशेषता ये है कि जैसे मैंने कहा, ये स्पेशलिस्ट नहीं है, ये सुपर स्पेशलिस्ट है। पर ऐसे सुपर स्पेशलिस्ट होते हुए भी इनका स्वभाव बहुत ही, इनके स्वभाव में अत्यंत नम्रता है और डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसा ये व्यक्तित्व है। और इन्हें बहुत बहुत रुचि है सेवा में, चाहे वो कितनी भी छोटी सेवा हो, कैसी भी सेवा हो, परंतु बहुत ही रुझान, बहुत ही लगन से ये बाबा की सेवा करते हैं। और हमने देखा जैसे कि मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस होती है यहाँ पर, तो उसमें रिसेप्शन पर बैठकर कुछ करने की सेवा, छोटे से छोटी और हर प्रकार की सेवा में उनको बहुत रुचि है। और सेवा के साथ साथ ही ज्ञान योग में इनका विशेष रुझान है। तो ऐसे ये आध्यात्मिक प्रतिभा के धनी डॉक्टर ब्रिजेश भाई जी आज हमारे सम्मुख उपस्थित है और एक बहुत सुंदर विषय है जिस पर ये आज अपने विचार हमारे सम्मुख रखने वाले हैं। तो आज का इनका जो टॉपिक है वो है When Life Hurts, It Teaches, अर्थात जब जीवन, जब जिंदगी हमें कुछ चोट करती है तब वो बहुत कुछ सिखाती है। तो ये टॉपिक वैसे वो पहले पिछली बार आने वाले थे पर नहीं आ पाए कुछ दिनों पहले, इसलिए आज आए। कल इन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस किए, शायद आज जाएंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम आज का ये मंच डॉक्टर ब्रिजेश सर को समर्पित करते हैं। और एक दूसरी बात, ये टॉपिक सुनकर मुझे एक गीत याद आ रहा था, तो एक 2 मिनट के लिए वो गीत बजाएंगे, उसके बाद भाई साहब अपना वक्त, अपने विचार हमारे सम्मुख रखेंगे। तो ये जो गीत है बड़ा सुंदर फिल्म का गीत है पर इस टॉपिक से मिलता जुलता है।
ओम शांति। सर्वप्रथम तो आज की सभा में प्राण प्यारे बाप दादा का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हीं की शिक्षाओं से हम सब लोग यहाँ तक पहुंचे। धन्यवाद हमारे सचिन भाई जी का भी, उन्होंने मेरे बारे में जितना बताया जितना मुझे भी नहीं पता था। आप सबका भी धन्यवाद जो इतनी शक्ति इकट्ठी करके आए हैं कि नेक्स्ट 45 मिनट बिल्कुल बैठने वाले इंटरेस्ट से। और साथ साथ एक स्पेशल थैंक्स उन सब आत्माओं के लिए जो कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में निमित्त बने, कुछ ना कुछ व्यवधान, कुछ ना कुछ हर्ट, कुछ ना कुछ परिस्थितियां पैदा करने के, जिनकी वजह से मैं आज जो भी हूं यहां हूं। क्योंकि आज का टॉपिक ही है व्हेन लाइफ हर्ट्स इट टीचेस। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फर्स्ट। जो भी टॉपिक भाई साहब ने दिया तो आई स्टार्टेड, उस पर थोड़ा मंथन हुआ, टॉपिक की थोड़ी रिलेवेंस देखेंगे। ज्ञान में आने से पहले अगर ये टॉपिक मिला होता तो बहुत अच्छे से उसको बहुत इजीली एक्सेप्ट हो जाता, पर अभी ज्ञान में आने के बाद थोड़ा सा लगता है ना, हर चीज की थोड़ी काट छांट जरूरी है। लाइफ हर्ट्स, अभी अभी गीत हमने सुना क्या, ए जिंदगी गले लगा ले। जिंदगी नहीं लगाएगी तो हम जिंदगी को गले लगाएंगे। लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ, क्या है जिंदगी? लाइफ प्रोसेस, हम कहते हैं एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस कभी हमें हर्ट कर सकती है? लाइक प्रोसेस को सोते हैं, सोना भी एक प्रोसेस है, सोने में हम कभी हर्ट हो सकते हैं? नहीं, कोई प्रोसेस हमें कभी हर्ट नहीं कर सकती। तो ये कहना कि जब जिंदगी हमें हर्ट करती है, थोड़ा सा ज्ञान के हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगा, थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं कि व्हेन वी गेट हर्ट्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ लाइफ, व्हाट वी कॉल द जर्नी ऑफ लाइफ, वी लर्न। क्योंकि हर्ट कहां से आता है, कैसे आता है, क्या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, यही सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जब टॉपिक मिला था तो एक नॉवेल में पढ़ता था, नॉवेल में था कि कुछ एलियंस पृथ्वी पर आते हैं और वो यहाँ के रहने वाले मनुष्यों के बारे में एक स्टडी करते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनका बिहेव कैसा है। तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे नॉवेल की, जो कंक्लूजन था वो ये था कि पृथ्वी पर रहने वाले सारे मनुष्य जो है वो मेजोकिस्ट है। मेजोकिस्ट वर्ड नहीं सुना होगा, एक्चुअली एक सैडिस्ट होता है। सैडिस्ट वो लोग होते हैं जो दूसरों को दुख देते हैं और दुख देने के बाद दूसरों के दुख से वो खुश होते हैं देखकर। उसके साथ में एक दूसरे मेजोसिस्ट होते हैं। मेजोसिस्ट क्या करते हैं, मेजोसिस्ट होते हैं वो खुद को दुख देते हैं, स्वयं को दुख देते हैं और बाद में जब उस दुख से जो चिल्लाते हैं, जो उनको दर्द होता है, उसके लिए ब्लेम दूसरों को करते हैं। तो वही ऐसे ही कुछ हमारा टॉपिक था, हमने ब्लेम किसको किया, जिंदगी को, व्हेन लाइफ हर्ट्स। जबकि एक्चुअल में हर्ट कौन करता है ये अब सबको ज्ञान में आने के बाद तो एटलीस्ट सबको पता ही है कि कैसे हम लोग हर्ट होते हैं। हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर वी आर, मतलब आज हम जो भी हैं उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। हमारी चॉइस है, हम जो भी जिंदगी में बनना चाहते हैं, वेदर वी वांट टू बिकम कंपैशनेट और क्रूअल, हमें ज्ञानी बनना है या इग्नोरेंट बनना है, ये सब हमारी चॉइस है। कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें जिंदगी में इसके लिए फोर्स करेगा या हमारे ऊपर कोई दबाव डालेगा या हमें कोई खींच के ले जाएगा कि नहीं चलो तुम्हें ब्रह्मा कुमारी में ही जाना है या तुम्हें यही करना है या वो करना है। ये सारी चॉइस हमारी है, हम डिसाइड करते हैं कि हमें जिंदगी में क्या बनना है। तो वी आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर वी आर। अब जब हर्ट की बात करते हैं, हर्ट जिसे हम हिंदी में चोट या ताप या ठोकर कुछ भी कहते हैं। तो हर हम देखेंगे कि हमारी जिंदगी का एक अविभाज्य अंग है, इनसेपरेबल फ्रॉम अवर लाइफ, वी कैन नॉट सेपरेट। यहां पर जितने भी बैठे हैं उनमें से शायद कोई भी एक भी आत्मा ऐसी नहीं होगी जिसने जिंदगी में कभी ना कभी हर्ट फील नहीं किया होगा। कोई है ऐसा? शायद वो हर्ट ही कहीं ना कहीं हमको यहां लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हर्ट जो है वो हमारी जिंदगी से एकदम इनसेपरेबल है, हम अलग कर ही नहीं सकते। किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना कभी ना कभी, किसी ना किसी जिंदगी के मुकाम पर हम हर्ट जरूर हुए हैं। अगर सबकी स्टोरी एक एक करके सुनेंगे तो बाबा बोलते हैं ना, जैसे इंसाइक्लोपीडिया बन जाएगा। अगर हम देखें, इतिहास भी उठाकर देखें, तो राइट फ्रॉम वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने हार्ट होकर रामायण लिखी, अगर हम उनसे चलें और आज यहां तक डॉक्टर विजय सिंगल को देखें, तो सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ऐसा स्टिमुलस था जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वो फिर उसकी वजह से आगे बढ़ते गए। लेकिन जब हम लोगों को ये सब बात करते हैं, उनसे जब पूछते हैं कि आपकी जिंदगी में हर्ट कैसे आई, आज आप किसी को भी पूछो तो वो कुछ ना कुछ अभी भी उसकी जिंदगी में समस्या चल रही है, पहले भी चल रही थी, आगे भी चलती रहेगी। लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो अपनी जिंदगी में आई इन समस्याओं को या विपरीत परिस्थितियों को या हर्ट को ब्लेसिंग्स मानते हैं। उनमें से जितनों ने भी जिंदगी में आई इन समस्याओं को ब्लेसिंग्स माना और उनको ब्लेसिंग मान के उन पर कार्य किया, वो सब यहां बैठे हुए हैं। अभी हमने सब ने कभी ना कभी उन समस्याओं को पॉजिटिव रूप में लिया, वी क्रिएटेड ए पॉजिटिव एनर्जी आउट ऑफ दैट, और फिर उसी की वजह से हम आज यहां बैठे हुए हैं। तो आज सब यही हम डिस्कस करेंगे कि जो हार्ट है, हर्ट चोट जो है, उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है। लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर आप देखेंगे तो हर्ट के ऊपर बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं और उनमें लोगों ने उससे उबरने के लिए कई तरह के नुस्खे बताए हुए हैं। और बहुत से लोग हैं जो उन नुस्खों को यूज करके उन्होंने अपनी लाइफ में पार्शियली या कम्प्लीटली, कुछ अल्पकाल के लिए या पूर्णकाल के लिए, उससे मुक्ति भी पाई है। तो हमारा भी अभी यही है कि किसी ना किसी तरह हम अपने उन एक्सपीरियंसेस को, उन नुस्खों को यूज करके अपने आप को एटलीस्ट हर्ट फील कभी ना करें, अपने आप को हर्ट ना करें। एक शायर ने कहा, ये सब शायरियां मुझे याद नहीं होती इसलिए मैंने लिख लिए कि आवश्यक नहीं है कि हर लड़ाई जीती ही जाए, लेकिन ये अति आवश्यक है कि हर चोट से कुछ सीखा जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक जानवर की स्टोरी से, जिराफ। जिराफ आप सब लोग जानते होंगे ना, थोड़ा टॉल एनिमल होता है। इसकी क्या विशेषता है कि ये जानवर खाना भी खाता है तो गर्दन नीची नहीं करता अपनी, वो खाना भी गर्दन ऊंची करके ही खाता है। और तो और जब फीमेल जिराफ बच्चे को जन्म देती है तो बैठती नहीं है, इतनी टॉल है, लेकिन खड़े होकर ही बच्चे को बर्थ देती है। वो बच्चा जब पहली बार दुनिया में आता है, माँ के पेट में बड़े मजे कर रहा था, लेकिन जैसे ही आता है इस दुनिया में तो उसका सबसे पहला एक्सपीरियंस क्या है, जब वो उसकी बर्थ होती है तो वो इतने ऊपर से धाम से नीचे गिरता है। सोचता है कि अच्छा खासा था, पता नहीं ये तो कैसी दुनिया में आ गया, क्योंकि उसको पहले तो ये समझ में ही नहीं आता कि चोट है क्या, मुझे लगी किस चीज की, क्योंकि इससे पहले उसने कभी चोट अनुभव ही नहीं की। और देखिए, जैसे ही वो बर्थ लेकर नीचे गिरता है, जब तक वो कुछ समझे तब तक फीमेल जिराफ बिल्कुल उसके पीछे पहुंच जाती है, पोजीशन करती है, और वो बच्चा अभी आंख खुला भी नहीं होता है, उसमें जोर का एक लात पड़ता है फीमेल जिराफ उसके नाजुक अंगों पे। वो कहता है बड़ा डिफिकल्ट है, ये कहां दुनिया में आ गया, ये जीना इतना आसान नहीं है। आंख खोल के उठने के लिए तैयार होता है तब तक एक फटाक से दूसरी लात पड़ती है। वो कहता है अब तो अगर जीना है तो यहां कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो लात खा के ही मेरा ओम शांति हो जाएगा। इतने में उसको तीसरी लात पड़ जाती है। अब वो सोचता है कुछ नहीं, वो सीधा दुम उठाकर वहां से भागता है। जैसे ही वो भागता है फिर फीमेल जिराफ क्या करती है, जाके उसको अपनी स्टाइल में उसको आलिंगन करती है, उसको प्यार करती है। ऐसा क्यों करती है? आप सोचो इसमें, आप सोचो एक माँ बच्चे को पैदा होते ही मार रही है ना, हर्ट उसे भी हो रहा होगा, मारने में भी हर्ट हो रहा होगा। बच्चा जो इस दुनिया में आया अभी कुछ भी नहीं किया, सीधे उसको लाते पड़ रही है, ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्योंकि जो बच्चे का जो फ्लैश है ना वो शेर को बहुत पसंद है, और अगर वो बच्चा हिला नहीं तो माँ जब भी खान लेने के लिए जाएगी तो बच्चा वो शेर खा जाएगा। तो इसलिए उस बच्चे की जान बचाने के लिए वो उसको इतनी पीड़ा देती है, इतनी चोट देती है। तो चोट कहीं ना कहीं, कहने का जो भावार्थ है वो ये कि चोट कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में बेनिफिशियल है। अभी हमारा लुकआउट है कि उसको हम कैसे लेते हैं। तो आज हम जो स्पिरिचुअलिटी से हार्ट के क्या एस्पेक्ट है ना वो डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी को भी पूछें कि आपकी जिंदगी में जो भी हर्ट या चोट हुई है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आप लोगों को बोलिए कि जो भी हो रहा है आपके साथ उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है, तो तीन तरह के रिस्पॉन्स आएंगे। एक तो कुछ लोग बोलेंगे कि तुम हट जाओ सामने, तुम मटी जाओ, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो बिल्कुल नकार देंगे आपकी बात को। दूसरे होंगे जो ठीक है 50-50, हाँ ठीक है सुना। तो तीसरे किस्म के एक लोग होंगे जो कोशिश करेंगे कि अच्छा ये कैसे है, उत्सुकता बस उसको जानने की। उस कैटेगरी में हम सब लोग आते हैं। हमने भी जब हमें ये बताया गया कि हमारी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, तो हमने ये जानने की कोशिश की कि कौन कौन से फैक्टर है, क्या वजह थी जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्सिबल है। दो तरह की थिंकिंग होती है, एक होती है लीनियर थिंकिंग। लीनियर थिंकिंग मीन्स इंसान बिल्कुल एक लाइन में सोचता है, लाइक एक सिचुएशन है ए, दूसरी सिचुएशन है बी, तो ए सिचुएशन की वजह से बी सिचुएशन अराइज हुई है, मतलब बी इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ ए, एंड ए एंड बी आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अभी मैं आपका अपमान करूं तो आज मैं यहां बैठा हूं, आप हो सकता है आप पलट के कोई जवाब न दें क्योंकि मैं सीट पर बैठा हूं, आप आज सुन के चली जाएं, लेकिन कल हो सकता है आप यहां बैठे और मैं वहां बैठूं, तब आप मेरा जो भी अपमान है उसको सूद समेत वापस कर दें, तो सबको लगेगा कि हाँ ये तो बराबर हो गया भाई, इन्होंने इनका किया, इन्होंने इनका किया, सब बराबर हो गया। और ये लगता है मेरे अपमान के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था वो ये बंदा था, मैंने आज इनका किया इसलिए उसने उसका किया, तो हिसाब किताब बराबर हो गया। ये जनरल थिंकिंग है जो पब्लिक सोचती है कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैंने। लेकिन एक और थिंकिंग होती है साइक्लिकल थिंकिंग, जो कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। उसमें सिचुएशन ए का बी सी डी ई एफ जी एच किसी चीज से कोई रेलेवेंस नहीं है। ये सिचुएशन जब आती है, आप सड़क पर जा रहे हैं, आप उस बंदे से आप कभी मिले नहीं, कुछ नहीं, और वो आपका अपमान करते हैं, तब आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों होगा। और जो कि अक्सर होता है, आप लोगों से बात करेंगे बोलेंगे मैंने तो कभी जिंदगी में एक चीटी भी नहीं मारी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी सिखाई, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन लोगों को लीनियर थिंकिंग के हिसाब से समझाना बड़ा मुश्किल है। इस जगह हमारे को स्पिरिचुअलिटी काम आती है। आध्यात्मिकता हमको बताती है कि आप भले ही आपका जो देखने का दृष्टिकोण है वो थोड़ा सा चेंज है, आपको लीनियर दृष्टिकोण से नहीं देखना है। अगर आज आपके साथ कुछ हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्टली किसी चीज से रिलेटेड है। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी हमारे को हेल्प करती है समझने के लिए कि मेरे साथ जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार मैं कैसे हूं। इसमें बाबा के एक महावाक्य है, बाबा ने कहा है बच्चे जिंदगी में काले काले बादल आएंगे, जिंदगी में अंधकार छा जाएगा, निराशा होगी, लेकिन ऐसे समय में तुम क्या करना, हिम्मत मत हारना, अपना धीरज मत खोना, सिर्फ एक मुझ परम पिता परमात्मा को याद करना, तो जो तुम्हारे सूली है वो कांटा बन जाएगी। तो कहने में बड़े सिंपल से है माँ बाप, पर उस पर चिंतन जब चला, चिंतन चला कि बाबा ने काले काले बादल क्यों बुलाए, बादल तो ज्यादातर गोरे होते हैं, देखा ना सफेद वाले बादल होते हैं, काले बादल तो बहुत ही कम होते हैं, तो बाबा ने काले काले बादल क्यों बोला। कुछ चला चिंतन?
बादल भरे हुए होते हैं,
बारिश वाले होते हैं। अच्छा, तो उसको बाबा ने यहाँ क्यों यूज किया कि जिंदगी में अंधकार छा जाएगा? क्योंकि काले बादल थोड़ी कम डेंसिटी में होते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो सूरज को पूरा ढक देते हैं। सूरज जैसी पावरफुल सोर्स को काले बादल पूरी तरह ढक लेते हैं और फिर उस हिस्से में सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। तो काले बादल क्या है? वो काले बादल विपरीत परिस्थितियां हैं जो हमारे सामने आती हैं, तो वो हमारे हम जो सूरज हैं उसको रोशनी को वो पूरी तरह ढक देती हैं। बात यही खत्म नहीं होती, अभी इसमें और डीप जाना पड़ेगा, और डीप। क्यों बाबा ने क्यों यूज किया ये वर्ड? काले बादल का सोर्स क्या है? नहीं, काले बादल जो सूरज को ढकते हैं उनका सोर्स क्या है, कैसे बनते हैं? बनते कैसे हैं? जिम्मेदार पानी, हीट। हीट कहां से आई? तो सूरज की खुद की हीट से पानी का जब बाष्पीकरण हुआ, उसने थोड़ी सी धूल वगैरह ली, उससे काले बादल बने। तो कारण क्या था काले बादल बनने का? सूरज खुद सूरज ही रिस्पॉन्सिबल था उन काले बादल के बनने के लिए। फिर उन्हीं काले बादलों ने सूरज को पूरी तरह ढका, सूरज की रोशनी नीचे आना बंद हुई, उस एरिया में अंधेरा छा गया। अंधकार मतलब दुख। तो वही हमारी जिंदगी में भी वही होता है। हमारे किए हुए जो कर्म है वो काले बादल बन के हमारी जो रोशनी है उसको पूरी तरह ढक लेते हैं, और फिर हम कहते हैं क्या, पानी जिम्मेवार है, धूला जिम्मेवार है। लेकिन जिम्मेवार एक्चुअली में होता कौन? हम। तो ये है स्पिरिट। बाबा ने अपनी इस चीज को कितने अच्छे से समझाया काले बादल का उदाहरण देखे। काला मतलब दुख। हमारी जिंदगी में जो भी दुख आता है उसके लिए जिम्मेदार फिर हम है। इसी को अपन आध्यात्मिकता में कार्मिक फिलोसफी कहते हैं। जैसे कर्म मैं करूंगा वैसा उसका फल आएगा। और यही मेरे को फिर ये एक्सेप्ट करने में बहुत हेल्प करता है कि मैं ये जो भी कुछ मेरे सामने आ रहा है वो कार्मिक अकाउंट पूरा मेरा है। जैसे ही मैंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ ये जो परिस्थिति है इसके लिए जिम्मेवार मैं हूं, तो उसका क्या फायदा होता है हमारे को? आधा दुख खत्म हो जाएगा। और जब भी हम एक्सेप्ट करते हैं तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि हम कुछ सीखने के लिए पहला कदम बढ़ाते हैं। जब तक हम ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि गलती मैंने की है, तब तक हम सीखने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। उसके लिए बाबा के दूसरे माँ बाप के अक्सर हमने पढ़ा होगा, बाबा बोलते हैं कि बच्चे अगर कोई गलती हुई है तो मुझे बता दो तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? बाबा तो सुनता नहीं। एक्चुअली स्थूल में हम सोचे तो बाबा तो सुनता नहीं, पर फिर भी बाबा ये बात रिपीटेडली कहता है, अगर कुछ गलती हुई है तो मुझे बता दो तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। उसका क्या मतलब है? यू एक्सेप्ट, बिकॉज जैसे ही आपने पहला कदम बढ़ाया, जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, इसलिए बाबा बोलते मुझे अकेले में भी बता दो तो भी चलेगा। जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया तो आपका 50% माफ, मतलब आप वो गलती अब दोबारा नहीं करेंगे, बिकॉज यू हैव रियलाइज्ड, और आप उस गलती को सुधारने की दिशा में दूसरा अपना कदम बढ़ाएंगे। फिर बाबा नेक्स्ट लाइन बोलता है, अगर मुझसे छुपाया तो वो कई गुना बढ़ता जाएगा। इसका क्या मतलब है? अगर मैंने वो गलती एक्सेप्ट नहीं की तो दे आर वेरी हाई चांसेस कि मैं वो गलती बार बार फिर से रिपीट करता जाऊंगा, और जैसे जैसे मैं रिपीट करता जाऊंगा मेरा गुनाह का कारोबार जो है वो बढ़ता जाएगा। तो बाबा के महावाक्यों को जब चिंतन करते हैं तो बाबा कितनी बड़ी चीज हमको कितनी आसानी से छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं। यही डिफरेंस है स्पिरिचुअलिटी में और जो समाज है उसकी बातों में। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि जो भी कुछ किया है आपने उसको एक्सेप्ट कर लो, और समाज क्या कहता है? समाज क्या कहता है? समाज कहता है यू हैव डन ए मिस्टेक, यू आर मिस्टेक। अगर आपने कोई भी गलती की है तो आप गलत हो, अगर आप फेल हो, आपने कोई जिंदगी में कोई फेलवर है तो आप फेल हो। और स्पिरिचुअलिटी कहती है अगर कोई गलती की है तो उसको तुरंत एक्सेप्ट करो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनो, खुद को उसके लिए जिम्मेदार मानो। तो ये डिफरेंस है समाज, इसलिए समाज में जब भी हम कहते हैं मैं अपनी मिस्टेक पर अगर अड़ा रहूंगा तो फिर चांस है कि मैं आगे मिस्टेक और करता ही चला जाऊंगा। एक और कहावत है कि समय घाव भर देता है। गौतम बुद्ध ने ये बोला है कि समय सारे घाव कभी नहीं भर सकता, कुछ ना कुछ रेजिडुअल हमेशा रह जाएगा, लेकिन एक्सेप्टेंस अगर आपने जिंदगी में ले आई तो वो आपके घावों को हमेशा पूरी तरह भर देगी। और भी एक चीज है कि जितना बड़ा आप जिंदगी में एम बनाएंगे, आपने एम ऑब्जेक्टिव बनाया, कोई एम्बिशन आपका जिंदगी में जितना बड़ा है, वो कितना सफल होगा आगे चल के या नहीं होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी गलतियों को एक्सेप्ट करने की क्षमता कितनी है। क्योंकि आपको अगर एक्सेप्ट करने की क्षमता होगी गलतियों को, तो फिर आपको सुधारना उन्हें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपके बड़े बड़े एम्बिशन तभी पूरे हो सकते हैं जब आप में बड़ी बड़ी गलतियों को जितनी जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करने की क्षमता हो। अब क्वेश्चन आता है कि हर्ट यानी कि चोट यानी दुख यानी कि ताप आता कहां से है, कैसे आता है हर्ट। अभी तक तो हम बोलते हैं इफ लाइफ, व्हेन लाइफ हर्ट्स, अब लाइफ तो प्रोसेस है, वो कैसे हर्ट करेगी, तो हर्ट आती कहां से है। एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता, तो बेसिक फिजियोलॉजी, मतलब फिजियोलॉजी लाइक डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं ना कि बेसिक पैथोफिजियोलॉजी क्या है, एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं हुई तो हर्ट, मतलब इसमें हर्ट कहां से आया।
हम सोच रहे ये होना चाहिए लेकिन वो नहीं हो रहा
है, तो फील हुआ, वो फीलिंग किसने क्रिएट की, मैंने। तो हर्ट को भी हम एक एनर्जी की तरह ले सकते हैं, है ना, कि जब हमने कुछ किसी से एक्सपेक्ट किया वो पूरा नहीं हुआ तो हमने अपने मन में एक थॉट चलाया, कुछ संकल्प चलाए, कुछ एनर्जी क्रिएट की, वो एनर्जी ने हमारे को हर्ट किया। अब उस एनर्जी को हम कुछ और तरीके से भी यूज कर सकते थे। बाबा ने एक मुरली में बोला है कि बच्चे विकारों में बहुत एनर्जी है, याद हो गया आप सबको मुरली। और अगर आप उस एनर्जी को विकारों को पर विजय नहीं पा सकते तो एक काम ये करो कि विकारों की उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दो। हाँ, उसमें बाबा ने बताया कि लाइक जैसे एग्जांपल दिया था, अगर काम की बहुत एनर्जी है तो उसको स्नेह में कन्वर्ट कर दो, क्रोध अगर बहुत ज्यादा है किसी में तो उसको योग में कन्वर्ट कर दो, तो आपका योग जो है वो ज्वालामुखी योग जैसा हो जाएगा। तो बाबा ने ये सब क्यों बताया, तो ये जिंदगी में जब भी हमारे साथ ये जो हर्ट क्रिएट हुई, हर्ट वाली जो एनर्जी क्रिएट हुई, उसके बाद हमारे पास हमेशा दो चॉइस थी, या तो हम उस एनर्जी को अपने पॉजिटिव लेकर के उसको आगे बढ़ा सकते थे, और या फिर उसके वजह से हम नेगेटिव में जाते और डिप्रेशन में हो जाते या बीमार पड़ जाते, बीमारियों को जन्म देते। तो यहां सब जो बैठे हुए हैं वो सब कौन है, उन्होंने उन हर्ट को, उस एनर्जी को हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव लिया, है ना। लाइक एटॉमिक बम है ना, वही एटॉमिक बम ने पूरा हिरोशिमा नागासाकी खत्म कर दिया, उसी एटॉमिक एनर्जी से पूरे अमेरिका की लाइट जलती है। एनर्जी सेम है लेकिन उसका यूज क्या किया उस पर डिपेंड करता है। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग हर्ट वी कुड हैव यूज्ड दैट एनर्जी फॉर समथिंग पॉजिटिव। सामने वाले को हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं मानते, जैसे अभी आपकी से पूछो हर्ट कहां से आई तो बोले सामने वाले ने, मैंने उससे एक्सपेक्ट किया, उसने नहीं किया तो वो जिम्मेदार है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। सामने वाला सिर्फ अपना एक कर्म करता है, वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो एनर्जी हम तक नहीं आती, हम उसके कर्म को देखते हैं। जैसे हमने उसकी कोई बात सुनी, अगर हम उसके वर्ड्स को, जैसे उसने हमारे को सपोज कुछ गाली दे दी किसी ने, उसने गाली दी तो गाली से हम हर्ट नहीं होते हैं, हम हर्ट कब होते हैं जब हम उस गाली को स्वीकार करते हैं, उसके वर्ड्स को स्वीकार करते हैं और हम ये मान्यता बनाते हैं हमारा बिलीफ सिस्टम कि इसने जो कुछ कहा है मैं वैसा हूं, तब जाके मैं हर्ट होता हूं। अगर मैं गाली से अगर हर्ट होते, आप रोड से जा रहे हो, कोई दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, वही इंसान लड़ रहा है किसी दूसरे से, उसको भी वही गाली दे रहा है, तो आप हर्ट होंगे, नहीं होंगे ना। गाली तो वही थी, सेम गाली सेम एनर्जी, तो उस एरिया में जितने भी लोग थे सबको हर्ट होना चाहिए, पर हर्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मैंने उसको उस एनर्जी को एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसने जो बोला मैंने उसको एक्सेप्ट करके, जब मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो वो गाली दे रहा है वो मैं वही हूँ, मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से हटता हूँ और उसने जो बोला उसको स्वीकार करता हूँ, तब जाके मैं हर्ट होता हूँ। तो एक्चुअली में हमारी ये जो जर्नी है इधर जो ज्ञान में, वो हमारी जर्नी है ईगो से लेकर के सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ, सम्मान की तरफ। बाबा
अगर दोष लगाता है झूठा आरोप
फिर भी हम हर्ट होते हैं। इसके लिए बाबा ने मालूम बहुत अच्छी चीज दी हुई है आपको। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि बच्चे आपके ऊपर जितने भी कलंक लगते हैं, जिनके लिए कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप उतने कलंगीधर बनते चले जाते। अब ये ज्ञान सुनने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी हमारे ऊपर कोई ऐसा कलंक लगा रहा है जो कि हमने जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं है, तो वो हमारी हम उसने कलंगीधर बाबा की नजरों में बनते जाते हैं। तो हमें तो उसके लिए भी फिर धन्यवाद देना चाहिए उस आत्मा का कि चलो इसने मुझे कलंगीधर तो बनाया, ये शिव बाबा के बाबा के। तो जो हमने सीखा कि जो एक पहला होमवर्क था हमारा कि आज के बाद कुछ भी हो जाए, कोई भी अगर हर्ट में फील करता हूं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हमेशा अपने को मानूंगा। और दूसरा एक और जो इसके बाद आया कि कोई भी हर्ट आए, कहीं से भी आए, किसी भी फॉर्म में आए, कितनी भी बड़ी हर्ट हो, लेकिन मुझे आत्मा को बाबा के अनुसार उस पर विजयी बनना ही है। कुछ भी हो जाए मुझे उस पर विजयी बनना है, उसको सकारात्मक लेना है, उस एनर्जी को मुझे अपने प्रोग्रेस के लिए यूज करना है, उसकी वजह से मुझे कुछ नेगेटिव में नहीं जाना है। फिर आता है कि हर्ट कितने टाइप की होती है, कितने टाइप की हर्ट हो, देयर सो मेनी क्लासिफिकेशन, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, फिजिकल हर्ट, मेंटल हर्ट, सोशल, स्पिरिचुअल। पर एक जो हर्ट का जो क्लासिफिकेशन शास्त्रों में दिया हुआ है ना, ताप बोलते हैं शास्त्र में, ताप, वो तीन तरह के हर्ट होते हैं। एक हर्ट होते हैं जो हमारे प्रेजेंट जन्म के कर्मों के हिसाब से होते हैं, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक हर्ट। दूसरे हर्ट है अधिभौतिक हर्ट, जो कि पांच तत्वों के द्वारा जो हमारे को हर्ट होता है उसको बोलते हैं अधिभौतिक। और एक है अधिदैवीय हर्ट, जो कि हमारे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से। ये तीन हर्ट मेन गाए गए। अब इसके लिए शास्त्रों में आपने देखा होगा कि जब भी कुछ हवन वगैरह करते हैं अपन लोग, तो हम बोलते हैं ओम शांति शांति शांति, तीन बार शांति बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसी के लिए कि मेरे इस जन्म के पाप, पिछले जन्म के पाप और जो पांच तत्वों के द्वारा जो मुझे दुख है, वो तीनों मेरे हर्ट खत्म हो जाए और मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में, शांत स्वरूप में टिक जाऊं। हम लोग भी ओम शांति बोलते हैं। ये एक भाई जी ने एक्सपीरियंस सुनाया था कि वो बॉम्बे में एक लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने ओम शांति एक बार बोला तो उसमें सारे प्रकांत पंडित बैठे हुए थे, तो बोले बाकी तो सब आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन अभी एक चीज ही हमारे को समझ में नहीं, आप ओम शांति एक बार क्यों बोलते हो? उन्हें पता नहीं था। तो उन्होंने फिर उसको और वहां जो और दूसरे थे विद्वान उनसे पूछा, तो उन्होंने ये बात खोली थी कि तीन तरह के जो हमारे ताप हैं उनको खत्म करने के लिए आत्मा तीन बार ओम शांति 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 बोलते हैं, जिससे कि हम चले जाए। बाकी जो दूसरे क्लासिफिकेशन है हर किसी ने किसी भी तरह से किया है, लेकिन किसी भी क्लासिफिकेशन में ना जाके हमारे को बाबा ने जो बात समझाई, ये सारे क्लासिफिकेशन के झंझट में हमें नहीं पढ़ना है, हमारे को सिर्फ पूरी हर्ट का सिर्फ एक कारण समझ में आता है। क्या? जितनी भी चोट है, जितना भी ताप है, दुख है, जो भी क्रिएट हुआ, उसका सिर्फ एक कारण है। क्या एक कारण? मेरी गलत सोच। सिर्फ मैंने जब भी मुझे कुछ हर्ट हुआ तो उस समय मुझे जो शक्ति यूज करनी चाहिए थी वो मैंने यूज नहीं की। कौन सी शक्ति यूज करना चाहिए अगर कोई मुझे हर्ट करने की कोशिश? सहन शक्ति। नहीं, सहन शक्ति यूज करेंगे तो हम उसको वो नहीं कर पाएंगे, कुछ और भी एक शक्ति यूज करनी है। परखने की शक्ति यूज करना है। इसमें परखने की शक्ति का बहुत यूज है कि सामने वाला जो मुझे बोल रहा है उसका इंटेंशन क्या है, उसका भावार्थ क्या है, उसके एटीट्यूड क्यों वो ऐसा बोल रहा है। और दूसरा सामने वाला तो ठीक है, जो बोला बोल दिया, उस समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने उसका रिस्पॉन्स क्या दिया है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैंने उस चीज को ढंग से परखा है या नहीं परखा है। एक रियलाइजेशन पावर चाहिए और एक परखने की शक्ति चाहिए कि मैंने उसका जो रिस्पॉन्स दिया, उसने तो एक बात बोल दी लेकिन हर्ट किससे हुआ, जब मैंने उस बात को अंदर लेकर मैंने जो रिस्पॉन्स क्रिएट किया उसकी वजह से मुझे हर्ट हुआ। तो मुझे वो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैं प्रॉपर ढंग से सोचूं। अगर मैंने एक बार भी कुछ गलत सोचा तो पक्का फिर ये हर्ट गोइंग टू बी इंक्रीज, फिर बढ़ने ही वाला है। आप तीव्र पुरुषार्थी हो जाए आपके आगे कोई भी स्पीड ज्यादा नहीं हो सकती। तो उसमें जो एक है ना कि नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे ना। सितारे के लिए लोग कितना भागते हैं, मेरे भाग्य का सितारा बदल जाए। पंडितों के पास जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, पंडित क्या करेगा, एक तावीज दे देगा, अंगूठी दे देगा, कोई यज्ञ कराएगा, कुछ दान कराएगा, उससे कुछ बदलता है? पर फिर भी कुछ लोगों का बदलता तो है। साइंस है वो पूरा, उसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स है पूरी, तो कुछ ना कुछ तो उसमें होता है। फेथ रहता है, फेथ से बदल जाता है। हाँ, तो कौन सी चीज बदलती है? हमारी सोच। जैसे ही उसने कहा आप ये तावीज पहन लो अब आप इससे दूर उठ जाओगे, तो हमारी जो सोच है ना वो इमीडिएटली चेंज होती है। वो जो नेगेटिव सोच थी हम इनवाइट कर रहे थे, उसकी जगह हम पॉजिटिव होते हैं, और जो हमारी जो सोच से जो पॉजिटिव एनर्जी जाती है वो उस चीज को दूर करती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आया 40 इयर्स, बहुत हैप्पी, खाने पीने का कोई टाइम नहीं, उल्टा सीधा खाना, नो एक्सरसाइज। तो हम भी ज्योतिषी है ना एक डॉक्टर, तो भाई जी ने उसको बोला अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो 6 महीने के अंदर तुमको डायबिटीज हो जाएगी। तो ये भी एक भविष्यवाणी है ज्योतिषी की तरह, भविष्यवाणी है ना, और वो सच है। अगर वो अपनी उसी लाइफ स्टाइल को कंटिन्यू करेगा तो उसको पक्का डायबिटीज होने वाली है। लेकिन अब उसके पास चॉइस है, उसने ये इन्फॉर्मेशन तो ले ली, अब उसके पास चॉइस है, या तो वो अरे मुझे 6 महीने बाद डायबिटीज होने वाली है तो जितनी खराब लाइफ स्टाइल थी उसमें एक और ऐड कर ले, एक और टेंशन ऐड कर ले और 6 महीने की बजाय 2 महीने में ही डायबिटिक हो जाए। या फिर दूसरी चॉइस क्या है, अच्छा मुझे कैसे हो सकती है डायबिटीज, आज से मैं देखता हूँ कैसे डायबिटीज होगी। और उसने अपनी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज की, खाना, तो जो डायबिटीज 6 महीने बाद होने वाली थी वो पोस्टपोन हो गई या नहीं। पर प्रिडिक्शन गलत नहीं था, ज्योतिष गलत नहीं था, ज्योतिष वॉज राइट, लेकिन उस ज्योतिषी से हमारे को जो मिला उसके बाद हमारी चॉइस थी कि हम उसको कैसे यूज करते हैं उस एनर्जी को, और उसी के आधार पर फिर हमारा भविष्य डिसाइड होता है। अब सवाल आता है कि लाइफ ने तो हर्ट कर दिया, मतलब हमने अपने को हर्ट कर लिया, अब हर्ट हो गए हैं तो करें क्या, क्या करना चाहिए, हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। हमने कर लिया हर्ट अपने को, अब क्या करें, क्योंकि एकदम से तो परफेक्ट सब हुए नहीं कि हर्ट होंगे ही नहीं, हर्ट नहीं होना कोई भी है, बचने दो। तो हमारा जो सबसे पहला रिस्पॉन्स है वो एक्सेप्टेंस है ना, हमारे को उस चीज को एक्सेप्ट करना है कि जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं हम सुधरने की तरफ अपना सबसे पहला कदम बढ़ाते हैं, ये हमने डिसाइड किया। दूसरा कि किस टाइप की एनर्जी हमने क्रिएट की वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे बाबा कहते हैं कि क्रोध को योग में कर दो, ऐसे ही इस नेगेटिव को हम पॉजिटिव में कर सकते हैं। परखने की शक्ति यूज करो, रियलाइजेशन पावर यूज करो, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं तो अभी इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। एक और जो चीज इसके बाद आती है वो है कि व्हेन लाइफ हर्ट्स इट टीचेस। तो भी सब इतना सुनने के बाद अब मुझे ये बताओ क्या क्या सीखा है, क्या क्या टीच, हर्ट ने हमें क्या टीच किया है, जब हम हर्ट होते हैं तो हम क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या सीखते हैं, लड़ने की ताकत आती है, फाइटिंग पावर, और चेंज करना है, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है। जब मुझे पता चल गया कि मेरी ये लाइफ स्टाइल गड़बड़ है अब मुझे इससे बीमारी हो सकती है, तो मेरा सबसे पहला काम है मैं उस लाइफ स्टाइल को चेंज करूं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि वेन आई कांट कंट्रोल द थिंग्स, आई नो आई कांट कंट्रोल द सिचुएशन बट आई कैन ऑलवेज हैव कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। मैं परिस्थितियों को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने ऊपर हमेशा नियंत्रण कर सकता हूं। एक और चीज है कि दुनिया में जो चीजें हैं, परिस्थितियां, जो भी कुछ है, उसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसको कैसे देख रहे हैं वो हम अपना एटीट्यूड बदल लेते हैं। और जब ये दोनों चीजें हम करते हैं, इसके साथ में हम चेंज होने की जब क्षमता रखते हैं, तो वी बिकम वेरी स्ट्रांग, वेरी पावरफुल। और पावरफुल होना अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लिस है। अगर आप एक बार आपने आपके दिमाग ने ये मान लिया कि मैं पावरफुल हूं और उस पर बिलीव कर लिया, तो देन यू बिकम अनस्टॉपेबल, यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट। आप किसी भी चीज में कहीं भी एक्सेलेंस कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। एक और जो चीज होती है, हर्ट मेक्स अस कंप्लीट, है ना। ब्रह्मा बाबा का एग्जांपल लेते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज कृपलानी, एकदम रॉयल पर्सनैलिटी, बढ़िया राजाओं की तरह रहते थे। राजा भी उनको, बाबा को ये बोलते थे कि बाबा राजा तो दादा आपको होना चाहिए था, हमसे तो ज्यादा राजा स्टाइल में आप रहते हो। एक ऐसे इंसान में फिर बोलते हैं राह चलते ब्राह्मण फंस गया, अब शिव बाबा की प्रवेशता हो गई। जैसी शिव बाबा की प्रवेशता हुई, लोग कहने, लोगों को साक्षात्कार होने लगा। बाबा ओम करते थे, लोगों को साक्षात्कार होता था। तो जो उनके दोस्त साथी थे जो कहते थे बाबा राजा आपको होना चाहिए, वो क्या कहने लगे, पता नहीं कहां से जादू सीखाया है और लोगों को बेवकूफ बना रहा है। यहां तक छापा क्या, एक बुड्ढा है, अखबार में यही वर्ड था, एक बुड्ढा है अपने को कृष्ण का अवतार कहता है, उसे 16108 पटरानियां चाहिए, 300 हो गई, बाकी की जुगाड़ कर रहा है। सोचो एक ऐसे इंसान को जो लोग ये कहते थे कि आपको राजा होना चाहिए, जब वो उसी के बारे में जब ऐसी बातें होती होंगी तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। लेकिन बाबा ने क्या किया, आज देखो वो लोग जो कह रहे थे ऐसा, उनके नाम कहीं नहीं है। और ब्रह्मा बाबा का नाम कहा, 140 कंट्रीज में, है ना, 140 कंट्रीज में उनके नाम से इंस्टीट्यूट चल रहा है। तो कैसे संपूर्ण बने, 1969 में वो आत्मा पूरी तरह संपूर्ण बन गई। तो कैसे, क्योंकि वो एनर्जी को ना पॉजिटिव यूज किया, पूरी तरह पॉजिटिव। शिव बाबा को देख लो, हम सभी को एक लास्ट में हम उन सब आत्मा को धन्यवाद देंगे जिन्होंने भी हमें हर्ट किया ना। और शिव बाबा को देखो हमने कितना हर्ट किया, कण कण में, कच्छ मच्छ सब जगह बोला, पर उसने आके क्या किया, हमारे को सृष्टि का सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान दिया, सृष्टि के पूरे आदि मध्य अंत की नॉलेज दी। इस सब के बाद क्या बोला, बेटा आपने जो 63 जन्मों में जो भी पाप किए हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो मैं उन सबको कर दूंगा, आपको 21 जन्मों की बादशाही दे दी। तो बाबा से हमें सीख के हमें भी कुछ कुछ ऐसा ही बनना है। ये बहुत शॉर्ट में खत्म करना पड़ा टाइम की वजह से। अच्छा, लास्ट में जस्ट 2 मिनट एक कमेंट्री के साथ हम खत्म करेंगे। कमेंट्री बिल्कुल अपने को ही डेडिकेटेड है, मैं पढ़ूंगा जस्ट 2 मिनट। म्यूजिक ओम शांति। आप सब रिपीट करेंगे, आई एम ए पावरफुल बींग, आई एम द क्रिएटर ऑफ all my feelings irrespective of the stimulus. People can cheat me, betray me, exploit me, but they cannot cause any harm to me. Their power is only limited to what they can do to my outer world. They don't have any influence on my inner world. I create every emotion and I have a choice. I forgive myself by not blaming others for my pains. I take responsibility. I heal myself. I forgive myself. I'm not only happy, but I'm blissful. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.